सायराम, साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
बोलिक साई नाम रे, बोलिक साई नाम रे, कहाँ कहाँ मैं ढूंढूं तुझको, तेरे बिन है सुना जीवन, सुबह हो शाम हो तेरा दर्शन, तोड़ चुका हूँ सारे बंधन, पूरब तेरे तन में गुलशन सबके, तेरे मन में चिंतन सबके, तेरे घट में साजन सबके, तेरे सूरत दर्शन सबके, सबकी सूरत तेरा दर्शन,
बोलिक साई नाम रे, बोलिक
सबकी झोली तेरी झोली, सबकी टोली तेरी टोली, सबकी होली तेरी होली, सबकी बोली तेरी बोली, सबका जीवन तेरा जीवन,
बोलिक साई नाम रे, बोलिक
सबके काजल तेरे पारे, सबके आँखें तेरे तारे, सबके सांसे तेरे धारे, सारे इंसान तेरे प्यारे, सारी धरती
पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा अपारे पाही मुरारे। पुनः अपि दो शब्दों को साथ ला जाए, इनकी संधि हो जाए तो शब्द बनता है पुनर्पि। पुनर्पि का अर्थ है वंस अगेन, एक बार फिर से। पुनर्पि जननम, जननम का अर्थ है जन्म लेना। पुनर्पि मरणम, मरणम का अर्थ है मरना, अर्थात एक बार फिर से जन्म लेना, एक बार फिर से मरना। पुनर्पि जननी जठरे शयनम, एक बार फिर से जननी का अर्थ है माता, जठरे का अर्थ है कोख, गर्भ या पेट, शयनम का अर्थ है लेटना, अर्थात एक बार फिर से माता की कोख में लेटना। इहा संसारे, इहा का अर्थ है ये, संसारे का अर्थ संसार, बहुत दुस्तारे दुस्तर है, बहुत कठिन है, कृपा पारे, अगर कृपा हो जाए, पारे का अर्थ इन्फिनिट कृपा हो जाए, पाही का अर्थ है बचाना, मुरारे का अर्थ है ईश्वर, मूर राक्षस को मानने वाले परमात्मा भगवान कृष्ण। अगर पूरे श्लोक को एक साथ बोल दिया जाए, पुनर्पि जननम, पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जननी जठरे शयनम, इया संतारे बहु दुस्तारे, कृपा पारे पाही मुरारे। एक बार फिर से जन्म लेना, एक बार फिर से मरना, एक बार फिर से माता की कोख में लेटना, इस संसार को पार करना बहुत दुस्तर है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। परमात्मा की असीम कृपा से ये हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बार बार जन्म होना, बार बार मरना का मतलब क्या हुआ? शास्त्र कहते हैं आत्मा बारंबार शरीर धारण करती है, लेकिन यह सिलसिला कब तक चलता रहता है? कभी तो खत्म होना चाहिए ना, कहीं तो इसमें विराम लगना चाहिए। हम कहते हैं जन्म उपरांत जन्म, जन्म उपरांत जन्म, जन्म हुआ मृत्यु हुई, जन्म हुआ मृत्यु हुई, जन्म हुआ मृत्यु हुई, एक ही आत्मा अनेक शरीरों से होके गुजर रही है। लेकिन क्यों गुजर रही है? क्या पाना चाहती है? क्या केवल संसार को भोगना चाहती है? आत्मा का लक्ष्य क्या है? आत्मा को कहां पहुंचना है? शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र कहते हैं आत्मा परमात्मा का रूप है, लेकिन वह परमात्मा से अलग है। बात समझ में नहीं आई भाई? आपके पास एक बोतल है, उसके अंदर आपने एक सागर का जल भर दिया, थोड़ा बहुत सी वाटर, अ वाटर फ्रॉम द ओशन। उस बोतल को आपने कस के बंद कर दिया, वो छोटी बोतल को जिसमें आपने चंद बूंदे सागर के जल की डाली है, उस बोतल को आपने दूसरी बोतल में डाल दिया और उसको भी कस के बंद कर दिया, दूसरी बोतल को भी आपने तीसरी बोतल में डाल दिया, कस के बंद कर दिया। अब आपके पास क्या है? तीन बोतलें हैं, 1, 2 एंड 3। बोतल नंबर वन उसमें क्या है? थोड़ा जल है, सागर का जल। बोतल नंबर टू के अंदर आपने पहली बोतल को डाला, बोतल नंबर टू को आपने थर्ड बोतल में डाल दिया, वन को टू में, टू को थर्ड में। अगर हम इस बोतल को समुद्र में फेंक दें, जो बोतल के अंदर बोतल, उसके अंदर बोतल, जो उसमें जल है, क्या वह समुद्र के जल से मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि वो एंट्रैप्ड है, वो कैद है। पहली बोतल को तोड़ा जाएगा तब भी पानी नहीं मिलेगा, दूसरी बोतल को तोड़ा जाएगा तब भी पानी नहीं मिलेगा, तीसरी बोतल को तोड़ा जाएगा तब वह जल समुद्र में मिल जाएगा। एक बार वो जल समुद्र में मिल गया, क्या आप पहचान पाएंगे वो जल कौन सा था? क्या समुद्र में से उसी जल को निकाल पाएंगे आप? नहीं, क्योंकि वह समुद्र में घुल गया, मिल गया। इसी प्रकार से हमारा शरीर है जो बाहर की बोतल है, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, इसे कहा गया सूक्ष्म शरीर, वो दूसरी बोतल है, उसके अंदर आत्मा है, वो तीसरी बोतल के भीतर है। तीन शरीर है, हम बोलते हैं ना फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, उनके अंदर आत्मा है। तीन शरीरों के बाद विचार कीजिएगा, जब हमारी मृत्यु होती है वह आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती है, वो लास्ट बॉटल के बीच में। ये समस्या है, इसलिए कहा जाता है 12 बार जन्म हो रहा है आपका, क्योंकि वह बोतल का जल समुद्र से नहीं मिल पा रहा, अर्थात जो आत्मा आपके अंदर है वह शरीर छोड़ने के पश्चात भी परमात्मा से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आत्मा के ऊपर एक घेराव है, कोई चीज में फंसी हुई है, कोई चीज से घिरी हुई है, कोई चीज ने उसको दबोच रखा है। वो क्या है? जो चीज आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने दे रही, वो चीज क्या है? तो थिंक अबाउट इट। उसको कहा गया हमारी वासनाएं, हमारा मन, हमारे थॉट्स, बंडल ऑफ डिजायर्स। उन इच्छाओं को पूरा करने के हेतु, ध्यान दीजिएगा, अभी हम कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इच्छाओं की बात ही कर रहे हैं। जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, जब तक हमारी इच्छाएं सात्विक नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, केवल ईश्वर के मिलन के हेतु रह जाती हैं, तब तक हम बारंबार आते रहेंगे, पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जनरी जठरे शयनम। अब विचार कीजिएगा, इसको हम एक और चीज समझते हैं, एक माता है या पिता है, या माता पिता है, अपने छोटे बच्चे को लेके बाहर घूमने निकले, उन्होंने बच्चे की उंगली को पकड़ा हुआ है, बच्चे का नन्ना सा हाथ ऊपर उठा हुआ माता पिता के हाथ में है, माता पिता अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए गति वो तीव्र है, बच्चा फुदक फुदक के भाव के साथ चल रहा है, ट्राइंग टू कीप अप द पेस कहते हैं ना ऐसे। वो बच्चे का हाथ क्यों पकड़ते हैं? ताकि बच्चे को बचा पाए, अन्यथा बच्चा गलती से इधर उधर जा सकता है, कहीं गलत जगह जा सकता है, कहीं उसका एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, तो इसलिए माता पिता बच्चे के हाथ को पकड़ के चलते हैं, पकड़ के ही चलना सिखलाते हैं। बच्चा अब बड़ा हो गया, टीनेजर हो गया, अब आप कहीं बाहर जाते हैं, बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, वह झट से हाथ छुड़ाता है आपका, क्या कर रहे हो आप? आपको हैरानी होती है, आपका अपना लाल है, आपका बच्चा क्या हो गया, आपने बच्चे के हाथ को पकड़ा है? वो कहता है छोटा बच्चा थोड़ी चल सकता, मुझे मालूम है, शर्म आती है, मेरे दोस्त देख लेंगे क्या बोलेंगे, मैं अभी भी माँ बाप का हाथ पकड़े चलता हूं। और बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ बाप के हाथ को नहीं पकड़ते, क्योंकि बीच में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन वॉक माई सेल्फ, आत्मशक्ति आ गई है। लेकिन आत्मशक्ति के साथ साथ एक अहम भी आ गया है कि मैं स्वयं कर सकता हूं, आई कैन डू माई सेल्फ, अहंकार भी आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो बातें यहां उभर के आ रही हैं। पहले माता पिता बच्चे के हाथ के पकड़ के, बच्चे के हाथ को पकड़ के उसको चलना सिखलाते हैं, उसके साथ चलते हैं। यहां पर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को, पुत्री को एक डायरेक्शन दें, चलना तो सिखलाएं लेकिन चलना कहां है, किस डायरेक्शन में जाना है, दिशा क्या है। दैट हैव टू कम फ्रॉम पेरेंट्स। देखिए आजकल क्या होता है, माता पिता क्या करेंगे, बच्चे के सुख का ख्याल तो रखना चाहिए लेकिन सुख के साथ साथ आदतें नहीं बिगाड़नी चाहिए। बच्चा लविश लिविंग जीना चाहता है, माँ बाप बच्चे की हर इच्छा पूरी करते हैं, बच्चे की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए एक पुरुष बन गया है, स्त्री बन गई है, तब उनका समय आ गया है कि अपने माता पिता के हाथ को पकड़ें। जिन हाथों ने उनको पकड़ के चलना सिखलाया है उनको उन्हीं हाथों में पकड़ के उनको चलाएं, ताकि वृद्धावस्था में आ गए हैं अब आज उनको आपकी जरूरत है। हाउ मेनी ऑफ अस डू दिस, हम में से कितने ऐसे लोग ये करते होंगे। माता पिता की सेवा करना बहुत कठिन लगता है। अपनी बीबी की सेवा कर लोगे आप, अपने पति की सेवा कर लोगे, अपने बच्चों की सेवा कर लोगे, लेकिन माता पिता की सेवा करना बहुत हार्ड लगता है। जब हम अपने माता पिता को छोड़ के अलग होते, अलग रहना चाहते हैं, डजंट दिस अप्लाई टू ए डिवाइन लॉर्ड। परमात्मा भी तो हमको पकड़ के चलना सिखलाता है लेकिन हम परमात्मा के हाथ को छोड़ते हैं। हम भगवान के हाथ को केवल तब पकड़ना चाहते हैं जब हमारे ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे होते हैं, व्हेन वी आर इन ट्रबल। अन्यथा हमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, वी आर सेल्फ कॉन्फिडेंट। दुख में भगवान याद आते हैं। हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर भाग रहे हैं, अपने कर्तव्यों से अपने मुख को मोड़ रहे हैं। हमारा कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति? अगर सब लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते, आज ओल्ड पीपल होम नहीं होते, वृद्धाश्रम नहीं होते। कितना समय निकाल पाते हैं मां बाप के बैठने का? आधा टाइम लग जाता है हमारे मोबाइल फोन में, इंटरनेट में, टीवी में। कितना समय हम देते हैं अपने माता पिता को? हफ्ते में 5 मिनट, 10 मिनट? पहली बात यह जहां लगेगा। दूसरी बात, हम अहंकार में, ममकार में, इच्छाओं में बहते जा रहे हैं। देयर नो एंड टू दिस। जब तक हम अपनी इच्छाओं पे विराम नहीं लगाएंगे तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। जब तक हम अपने कर्मों में सुधार नहीं लाएंगे तब तक हमारा जन्म होता रहेगा। जब तक अपने भीतर बसे हुए अहंकार को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक जन्म होता रहेगा। पुनर्पि जननम, बार बार जन्म लेना। बार बार जन्म लेके मृत्यु तक की यात्रा में हम ये सीखते हैं किस प्रकार से हम अपने अहंकार को त्यागें, किस प्रकार से हम अपने कर्तव्यों को पहचानें, धर्म के रास्ते पर चलें। धर्म का केवल रिलीजन नहीं होता, धर्म का ड्यूटी भी होता है। और किस प्रकार से हम अपनी इच्छाओं पर विराम दें। कभी आप ना किसी मंदिर में जाकर देखिए, कोई कथा वथा हो रही हो, छोटे बच्चे भी होते हैं, माँ बाप के साथ बैठे होते हैं, माँ बाप कथा सुन रहे, बच्चा उठ जाएगा, यहां से वहां भागेगा, वहां से वहां भागेगा। माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा एक पल टिक के बैठता नहीं है, इसके पांव ऐसे चलते रहते हैं, बच्चों के पांव चंचल, चंचलता होती है पांव में, बहुत एनर्जी होती है, बहुत शक्ति होती है, ऊर्जा भी होती है, एक जगह बैठती नहीं, यहां से वहां, वहां से वहां, यहां से वहां, वहां से वहां। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, टीनेजर हो गया या यूथ बन गया, जवानी में कदम रख लिए, जवान अवस्था में इंसान का रोम रोम चंचल हो जाता है, केवल पैर नहीं, क्या देखते हैं लोग डांस कर रहे हैं, पूरी पूरा शरीर थिरक रहा है, द होल बॉडी शेकिंग। मन में वासनाओं का उमंगों से भरा हुआ है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं अंदर, यहां से वहां, वहां से यहां भाग रहे हैं, घर पे बैठना नहीं चाहते, दिन रात बाहर घूमना चाहते हैं, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, बचपन में पांव चंचल, जवानी में रोम रोम चंचल। समय की गति के साथ साथ बुढ़ापा भी आ गया द्वार पे, लेकिन बुढ़ापे को हम देखना नहीं चाहते हैं, कहते हैं द्वार से चला जा, बुढ़ापा कैसे आता है, कैसे अनुभूति होती है, बाल आपके सफेद होने लग जाते हैं, हम कहते हैं नथिंग डूइंग, बालों को डाई कर लेते हैं, आंखें खराब होने लग जाती हैं, चश्मा लगा लेते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लेते हैं, या ऑपरेशन करा लेते हैं आंखों का, झुर्रियां पड़ती है चेहरे पे, उसको ऑपरेशन करा लेते हैं, अलग से रिंकल फ्री क्रीम चाहिए हमारे को, पोतो मुंह के ऊपर, विचार कीजिएगा, दांत टूटते दांतें लग जाते हैं, लेकिन बुढ़ापा नजर नहीं आना चाहिए, बुढ़ापा तो आ गया, आप नकार नहीं सकते हैं, आप अपने आप से बेईमानी करेंगे, लेकिन लोगों को नजर तो नहीं आ रहा ना, वी स्टिल लुकिंग यंग। फिर दिखता है कि हमारे बच्चे तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, जो चीजें हम नहीं कर पाए बच्चे कर रहे हैं, फिर उनको प्रवचन देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हमारे जमाने में ये होता था, उस समय ये होता था, बुढ़ापे में जुबान चंचल। बचपन में पांव चंचल, जवानी में रोम रोम चंचल, बुढ़ापे में जुबान चंचल। सारी साधना धरी की धरी रह गई, अंतकाल आया, परमात्मा का नाम नहीं ले पाए, उमंगे दबी रह गई, इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, पुनर्पी जन्म पुनर्पी मरणम, एक बार फिर से जन्म लेना, एक बार फिर से मरना, पुनर्पी जननी जठरे शयनम, एक बार फिर से माता के कोख में लेटना। यह संसारे बहुत उतारे कृपा पारे भाई मुरारे, संसार को पार कैसे कर रहे हैं हम, उसका तरीका क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। भगवान बाबा ने 13-14 वर्ष की उम्र में पहला भजन गाया था, मनस भजो रे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। मनस है, मनुष्य नहीं कह रहे, मनस कह रहे, हे मन, मनस भजो रे, हे मन, गुरु के चरणों को भजले, परमात्मा के नाम को भजले, मनस भजोरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरनम, इस भव सागर को पार करना अन्यथा अति कठिन है। गुरु के चरणों को पकड़ ले, उसको भज ले। गुरु कौन है? जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर मां अमृतम गमया। जो मुझे असत्य से सत्य क्यों ले जाए, जो मुझे अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाए, जो मुझे मृत्यु से अमरता क्यों ले जाए। अमरता क्या है? नो मोर बर्थ। सारे वेदों शास्त्रों ने ये ज्ञान निचोड़ के भर दिया, लेकिन हमने समझने का प्रयास नहीं किया। दिस इज द प्रॉब्लम। परमात्मा के नाम को बार बार भजने से, बार बार जपने से, बार बार उस पर ध्यान देने से, कंटेम्पलेट करने से एक समय अवश्य आएगा, इच्छाएं भस्म होने लग जाएंगी। एक समय अवश्य आएगा, सारे कर्म जलने लग जाएंगे। जब अहंकार नहीं होगा तो कर्मों का फल कहां से आएगा? इफ यू आर नॉट द डूअर, व्हाई वुड यू गेट द फ्रूट ऑफ द एक्शन? जब आप करता ही नहीं है, जब आपने कर्म किया ही नहीं है, फल आपको क्यों मिलेगा? हमें कर्मों का फल इसलिए मिलता है क्योंकि हम कर्तापन हमारे भीतर है कि वी फील वी आर द डूअर्स। जब हमने वो त्याग दिया, हम करने वाले हैं ही नहीं, वो हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं है, हम ऐसा सोचते भी नहीं है, तो हमारा कर्म जमा नहीं हो रहा। नो मोर एडिशन ऑफ कर्मास। विचार कीजिएगा जरा आप। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शहनम इया संसारे बहुत उतारे कृपा पारे पाई मुरारे। एक बार फिर से जन्म लेना, एक बार फिर से मरना, एक बार फिर से माता के कोख में लेटना, इस संसार को पार करना बहुत दुस्तर है। कृपा हो जाए मुरारी की, परमात्मा की, ईश्वर की, तभी हम इसको पार कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? ईश्वर की कृपा। व्हाट आर वी यर्निंग फॉर? व्हाट वी शुड यर्न फॉर? ग्रेस। भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? विचार कीजिएगा। परमात्मा की कृपा तब प्राप्त होती है जब हमारे भीतर से अहंकार खत्म हो जाता है। जब एक बार फिर हम अपने आप को बच्चा बना लेते हैं। बच्चा क्या होता है? श्री रामचरितमानस का पहला अध्याय अयोध्या कांड, माफ कीजिएगा बाल कांड, क्या है? बच्चा जो इनोसेंट है, जिसमें चलाकियां नहीं है। एक छोटा बच्चा अगर कमरे में सो रहा है, माँ किचन में काम कर रही है, साथ में टीवी देख रही है, टीवी में कोई सीन आ रहा है जिसमें बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन जब भी उसका अपना बच्चा दूसरे कमरे में रोता है, माँ हजारों काम छोड़ के भागती है, उसको अपने बच्चे की आवाज सारे शोरगुल में सुनाई पड़ जाती है। सुमित्रा कुमारी चौहान की एक पंक्तियां याद आ गई, रोना मच जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से हाथों जामाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुंच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनकर आया, जिसकी मंजल मूर्ति से मैंने न जीवन पाया। जब आप अपने आप को बच्चा बना देते भगवान के आगे, अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, परमात्मा आपको अपने गोद में लेके बैठ जाता है, आपका आपको दुलार करता है, आपका ख्याल करता है, आपकी रक्षा करता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस जर्नी, यू वन विद द गॉड। हम ब्रह्मास्मि। जय श्री सारा।